ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राजनीतिक दलों से देश, जनता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिनिधि सभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने का किया है आग्रह। कहा, राजनीतिक दल बिना किसी भ्रम की स्थिति पैदा किए जेन जेड समूह की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से जाएं जनता के बीच। हुमला के चंखेली गांवपालिका 4 बेसीखोला में जीप दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मृत्यु। और इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वेनेजुएला की लोकतंत्र कार्यकर्ता मरिया कोरीना मचादो को। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राजनीतिक दलों से देश, जनता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिनिधि सभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पर आज अंतरिम सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित सर्वदलीय बैठक में उन्होंने सुझाव दिया कि राजनीतिक दल 21 फरवरी को होने वाले चुनावों को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रपति पौडेल ने सरकार को सुझाव दिया कि वह शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करे तथा आम जनता को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने का विश्वास दिलाए। ये बात उनके प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने बताई। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए तथा उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि यदि कोई संदेह या अस्पष्टता हो तो वे बैठक में रखें। उन्होंने सभी से ये सोचने का भी आग्रह किया कि अगर वे चुनावों के अलावा अन्य विकल्प तलाशने लगें तो देश का क्या होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे बिना किसी भ्रम की स्थिति पैदा किए जेन जेड समूह की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से जनता के बीच जाएं। बैठक में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियां चुनावों में जाने के लिए हमेशा तैयार हैं और चुनाव शांतिपूर्ण, सुरक्षित, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में होने चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वह उन्हें आश्वस्त करे कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में होंगे। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि सरकार जानती है कि राजनीतिक दलों की भागीदारी के बिना चुनाव संभव नहीं होगा और सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार चुनाव के लिए शांति और सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध करेगी। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, चूंकि जेन जेड समूह हमारे बेटे और पोते हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए कि उन्होंने आज इतना असंतोष क्यों व्यक्त किया और बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जब राजनीतिक दल इसके अनुसार आगे बढ़ेंगे तो ये देश और जनता के हित में होगा। सरकार ने जेन जेड आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई भौतिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण, आसन्न चुनाव और आपदा प्रबंधन के लिए चालू आर्थिक वर्ष के स्वीकृत बजट के भीतर की परियोजनाओं से रकमांतर कर बजट प्रबंधन का निर्णय किया है। सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करते हुए बताया कि वर्तमान विशेष परिस्थितियों के लिए आवश्यक बजट प्रबंधन के लिए स्वीकृत बजट के भीतर की परियोजनाओं से रकमांतर करने का निर्णय किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के स्रोत प्रबंधन के लिए 20 अरब रूपये बराबर का ऋण पत्र, ऊर्जा बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एशियाई विकास बैंक से बजट सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहूलियत वाली ऋण सहायता प्राप्त करने के संबंध में बातचीत करने के लिए अर्थ मंत्रालय के सह सचिव की अध्यक्षता में वार्ता दल गठित करने का निर्णय किया है। इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक ने गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आश्विन 19 की सार्वजनिक छुट्टी का समर्थन करने, कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास की 400.53 वर्ग मीटर की जमीन का भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेड की 526.34 वर्ग मीटर की जमीन से उसी स्थान पर अदला बदली करने की स्वीकृति प्रदान करने, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के 15 सचिवों का स्थानांतरण करने, शहरी विकास संबंधी कानून में संशोधन और एकीकरण हेतु प्रस्तावित विधेयक तथा नगर विकास कोष संबंधी कानून में संशोधन और एकीकरण हेतु प्रस्तावित विधेयक के मसौदे के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने जैसे निर्णय किए हैं। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री खरेल ने दी। हुमला के चंखेली गांवपालिका के केन्द्र के पास बोलेरो जीप दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। उसी गांवपालिका के मेलछाम से गांवपालिका केंद्र पिपलांग जाते हुए वह बोलेरो जीप गांवपालिका केंद्र के पास स्थित बेसीखोला के गुरु ठेकना नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय हुमला के एसपी शंकर पोखरेल ने दी। बोलेरो जीप सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गिर गई, जिसमें चालक सहित 12 लोगों में से मां और बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा सुर्खियत ले जाया गया। मृतकों में उसी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के स्थायी निवासी लगभग 27 वर्षीय मानवीर बूढ़ा और उसी गांवपालिका की चरी गांव की मायके वाली हमला की सिमकुट गांवपालिका की लगभग 30 वर्षीय वसंती बूढ़ा तथा उनके 2 वर्षीय बेटे देवांग बूढ़ा शामिल हैं। नेपाली सेना ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके देश में शांति सुरक्षा बहाल करने के उद्देश्य के साथ आवश्यकता अनुसार वो काम कर रही है। सेना ने आज एक बयान जारी कर बीते भाद्र 23 और 24 गते की विषम परिस्थिति को सामान्य करने संबंध में नेपाली सेना द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति विद्वत वर्ग, समाजसेवियों, संचार कर्मियों और आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों और समालोचनात्मक अभिव्यक्तियों के प्रति आभार जताया है। बयान में कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा में पड़ सकने वाले असर का वस्तुपरक ढंग से मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार सेना ने पहल की है। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि मौजूदा संवेदनशील स्थिति में विभिन्न संचार माध्यमों और सामाजिक संजाल के जरिए नेपाली सेना की संस्था और नेतृत्व को जोड़कर संप्रेषित की गई टीका टिप्पणियों और धारणाओं को लेकर नेपाली सेना का ध्यान आकृष्ट हुआ है। इसके अलावा नेपाली सेना संबंधी जानकारी लेने के लिए जनसंपर्क तथा सूचना निदेशनालय से संपर्क कर यथार्थपरक सूचनाओं के संप्रेषण के लिए अपील भी बयान में की गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले की 58वीं सचिवालय बैठक ने सरकार से दलों को इनकार करने के रास्ते पर न चलने का आग्रह किया है। भक्तपुर के गुंडू स्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के निवास पर आज हुई सचिवालय बैठक के बाद उप महासचिव प्रदीप केवाली ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो एमाले चुनाव से नहीं भागेगी। इस संबंध में भी बैठक में विचार विमर्श हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एमाले चाहती है कि जेन जेड आंदोलन की गहरी जांच हो। उन्होंने आगे बताया कि बैठक कल भी होगी। नेकपा माओवादी केंद्र के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि उनकी पार्टी स्वच्छ, निष्पक्ष और धांधली रहित चुनाव के पक्ष में प्रतिबद्ध है। प्रेस सेंटर नेपाल द्वारा आज ललितपुर में आयोजित संपादकों के साथ संवाद कार्यक्रम में संयोजक प्रचंड ने कहा कि जिम्मेदार राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, बौद्धिक जगत और जनसंचार माध्यमों का ध्यान चुनाव का माहौल तैयार करने की ओर केंद्रित होना चाहिए। संयोजक प्रचंड ने जनजेट की मांगों को भी शामिल करते हुए नेपाल के संविधान में संशोधन करने और समाज में दिख रही निराशा और असंतोष को दूर करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं में अहंकार देखने को मिल रहा है, जिस पर उन्होंने आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि पहले की गई कमियों को सुधार कर और जनता के बीच जाने के अलावा राजनीतिक दलों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बागमती मधेश और कोशी प्रदेश के जिलों को जोड़ने वाला बीपी राजमार्ग आज अपराह्न से सिंगल लेन सुचारू हुआ है। इसी आश्विन की 17, 18 और 19 गते की लगातार बारिश के साथ आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण काभरे और सिंधुली के विभिन्न 13 स्थानों को मिलाकर करीब 4 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कर संचालित किया गया है। ये जानकारी संघीय सड़क सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमांडू के प्रमुख शुभराज न्योपाने ने दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये राजमार्ग परसों रविवार से डबल लेन भी सुचारू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आगामी आश्विन 28 गते मंगलवार को विश्वास मत लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सिंह ने मध्य प्रदेश सभा सचिवालय को पत्र भेजकर आश्विन 28 गते को विश्वास मत के लिए व्यवस्था करने का निर्देश किया है। वर्तमान मुख्यमंत्री सिंह की अगुवाई वाली सरकार से नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश सभा में विश्वास मत लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सिंह को केवल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी जनमत पार्टी ने भी समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए संसदीय दल द्वारा व्हीप भी जारी किया गया है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का संक्रमण पिछले समय देश भर बढ़ता गया है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का संक्रमण फिलहाल 42 जिलों के 110 पालिकाओं में फैला है। ये बात स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा बाल स्वास्थ्य तथा टीका शाखा प्रमुख डॉ अभियान गौतम ने बताई। उन्होंने बताया कि पिछले साल 86 लोगों में संक्रमण पाया गया था, जबकि इस साल ये संक्रमण 164 लोगों में पाया गया है। उनके मुताबिक टीका लगा चुके लोगों में भी आहिस्ता आहिस्ता टीका का प्रभाव खत्म होते जाने पर संक्रमण हो जाता है और समय पर इलाज न हो तो मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। आमतौर पर श्रावण महीने से कार्तिक तक अधिक सामने आने वाले इस रोग से नेपाल के 28 जिले उच्च जोखिम में हैं। बता दें कि 82% बच्चों को जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के विरुद्ध टीका लगाया गया है। तराई मधेश के जिलों में करवा चौथ का पर्व मनाया गया। विवाहित महिलाओं ने आज दिनभर निराहार उपवास रखकर रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अर्चना और दर्शन करके फिर अपने पति की पूजा अर्चना और दर्शन करके तथा पति के हाथ से जल ग्रहण करके करवा चौथ के पर्व का समापन किया। इस पर्व में चंद्रमा की पूजा की जाती है तथा चंद्रमा के रूप में अपने पति की भी पूजा की जाती है और चंद्रमा से अपने पति की चंद्रमा के समान दीर्घायु की कामना की जाती है। भरतपुर स्थित मालपोत कार्यालय चितवन में लगभग 2 लाख जमीन मालिकों के प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गया है। जेनजेट प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई आगजनी और तोड़फोड़ के कारण इस कार्यालय के सेवा क्षेत्र के भीतर के 1,98,000 रिकॉर्ड जलकर राख हो गए हैं। इसकी जानकारी कार्यालय प्रमुख रमेश प्रसाद गौतम ने दी। जमीन मालिकों के प्रमाण पत्रों का कागजी रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गया है, फिर भी 95% ऑनलाइन डेटा सुरक्षित बच गया है, ऐसा कार्यालय ने बताया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की राजनेता मरिया कोरीना मचादो को दिया गया है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर नोबेल कमेटी ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार मरिया कोरीना मचादो को वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से तानाशाही के सामने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का काफी दिलचस्पी से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को इसका दावेदार घोषित कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में सैन्य संघर्षों को शांत करवाया है। हाल ही में गाजा में हमास और इसराइल के बीच पहले चरण के संघर्ष विराम की भी उन्होंने घोषणा की थी। मरिया कोरीना मचादो ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके इस पुरस्कार को वेनेजुएला की जनता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। उन्होंने लिखा, सभी वेनेजुएला के लोगों के संघर्ष को ये मान्यता हमारे आजादी पाने के काम को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देगी। हम आज पहले से कहीं अधिक विजय की दहलीज पर हैं। हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में भरोसा करते हैं। इसके साथ ही मरिया ने लिखा, मैं ये पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे मुद्दे को लेकर उनके निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित करती हूं। मरिया कोरीना मचादो के इस पोस्ट को व्हाइट हाउस ने भी रीपोस्ट किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने राजनीतिक दलों से देश, जनता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिनिधि सभा के चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने का किया है आग्रह। कहा, राजनीतिक दल बिना किसी भ्रम की स्थिति पैदा किए जिन जेट समूह की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से जाएं जनता के बीच। हुमला के चंखेली गांवपालिका 4 बेसी खोला में जीप दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मृत्यु। और इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वेनेजुएला की लोकतंत्र कार्यकर्ता मरिया कोरीना मचादो को। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।